हरे कृष्ण। तो आप सबके बीच में भगवान का कुछ गुणगान करने का ये मौका मुझे दिया, इसके लिए मैं आप सबका अनुग्रही हूँ और कृतज्ञ हूँ और आप सबके आशीर्वाद की याचना करता हूँ ताकि कुछ बोल सकूं। तो साधारणतः जब मैं भागवतम पे वन टाइम प्रवचन देता हूँ तो वो जो अध्याय है उसका महत्व, उस श्लोक का महत्व और तात्पर्य का महत्व, इस पे इस तरह से जो प्रवचन को तीन विभाग में डिवाइड करके चर्चा करता हूँ मैं। तो यहाँ पे दशम स्कंद जो है ये भागवतम का मुख बताया गया है। जो पद्म पुराण में शिवजी और पार्वती देवी चर्चा करते हैं भागवत महात्म्य पे, तो तभी बताया गया है कि भागवतम जो है वह एक मूर्तिमान स्वरूप है और उसका उसमें जो भगवान का चेहरा है वह है दशम स्कंद। तो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों में 335 अध्याय हैं, उनमें से 90 अध्याय दशम स्कंद में है। तो लगभग एक तिहाई हिस्सा भागवतम का दशम स्कंद में ही है। तो दशम स्कंद की तुलना में सिर्फ 2 स्कंद इतने बड़े हैं। तीसरा स्कंद है जिसमें लगभग 35 अध्याय है और 11वां स्कंद जिसमें 31-32 अध्याय है, तो बाकी सब स्कंद बहुत छोटे है। दशम स्कंद में पहुंच जाते हैं परीक्षित महाराज को सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी, तब लगभग आधा से ज्यादा समय नहीं गया है, 3.5-4 दिन हुए हैं श्लोक की दृष्टि से देखे गए। पर ये दशम स्कंद का महत्व उसके सिर्फ विशाल मात्रा के कारण नहीं है। वास्तव में दशम स्कंद के हम तीन विभाग कर सकते हैं। पहले 40 अध्याय जो है वो वृंदावन लीला है, अगले 10 अध्याय जो है वो द्वारका लीला है, वो मथुरा लीला है, और 50वें अध्याय में भगवान द्वारका में अपना शहर स्थापित करते हैं, और 50 से 90 जो है वो लगभग द्वारका लीला है। यद्यपि सिर्फ द्वारका की लीला नहीं है, कभी वहां से भगवान कुरुक्षेत्र जाते हैं, कभी जरासंध के राज्य में जाते हैं, पर भगवान का जो कार्य है वो द्वारका में जो थे तभी जो किए हुए होता है। और जो पहले 40 अध्याय है भागवतम के दशम स्कंद के, उसके जो पहले 10 अध्याय है वो गोकुल की लीला है। जब भगवान वृंदावन में थे तो 3 जगह रहे, वो पहले 3 वर्ष वो गोकुल महावन में रहे, इसीलिए हम जो दामोदर अष्टकम में गाते हैं गोकुले भ्राजमानम, तो जो भगवान की जो बाल लीला है वो गोकुल में हुई। फिर इसी या 8वां स्कंद है, 9वां 10वां स्कंद 8वां अध्याय है, 9वें 10वें अध्याय के बाद 10वें अध्याय में यमल अर्जुन वृक्ष का उद्धार होता है, और उसके बाद में उपनंद जो नंद महाराज के बड़े भाई है वो कहते हैं कि यहाँ पे वृंदावन में बहुत खतरे हैं। तो वास्तव में तभी क्या क्या खतरे हुए हैं, जो सारे खतरे थे बाल लीला में वो सब असुर, 3 असुर थे प्रधान रूप से, और वो वृंदावन में आए थे, पूतना तृणावर्त और शक्तासुर। पर जब भगवान गोकुल महावन से वृंदावन जाते हैं और फिर वृंदावन में 2 साल रहते हैं, तो उसके बाद 3 साल वे नंदग्राम में रहते हैं। तो अभी 11वें अध्याय से भगवान अपने घर से बाहर जाने लगेंगे, इसलिए 11वें अध्याय जो है वो है वत्सासुर और वत्सासुर का वध, फिर बकासुर का वध, अघासुर का वध, ये सब जंगल में हुए थे। तो ब्रजधाम जो है इस सब जगह आते हैं उसमें, तो ब्रजधाम में ये 3 जो असुर थे मतलब गोकुल में, उनका भगवान ने वध किया और जो यमल अर्जुन वृक्ष था उनका उद्धार किया भगवान ने। तो यह जो भागवतम है उसका खास करके जो पहले 40 अध्याय है वह भगवान के मधुरता माधुर्य का बड़ा आस्वादन कराती है। तो हमारे संप्रदाय में खास करके जो 29 से 33 अध्याय है जो रास पंचाध्याय, तो उप रास पंचाध्याय जो है वो उन पे हमारे आचार्य ने विस्तारित रूप से उस पे तात्पर्य लिखे हुए। वास्तव में दशम स्कंद पे ही इतने विशाल रूप से तात्पर्य लिखे हैं कि वो सिर्फ दशम स्कंद के तात्पर्य पढ़ते पढ़ते जीवन चला जाएगा। वास्तव में हमारे लिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ के खत्म होना ही वो उससे जीवन चला जाता है। अभी भानु महाराज जो है वो जो आचार्यों ने संस्कृत में जो लिखे है ग्रंथ दशम स्कंद पे उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो मैं उनको एडिटिंग में मदद कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो हमारे आचार्य 3 प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं भागवतम के दशम स्कंद पे। एक तो है उस पे तात्पर्य, मतलब हर एक श्लोक को लेके जैसे प्रभुपाद जी ने भागवतम के 14वें अध्याय तक तात्पर्य लिखे, उसके बाद में उनके शिष्यों ने लिखे हुए हैं, तो वैसे ही पूर्वाचार्यों ने हर एक श्लोक पे तात्पर्य, वैसे कई आचार्य हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले श्रीधर स्वामी ने लिखा था। श्रीधर स्वामी बड़े रोचक व्यक्तित्व है, वास्तव में मायावाद संप्रदाय में थे, पर मायावाद संप्रदाय में होके वैष्णव का प्रचार करते थे, तो इस तरह से मायावादियों को अंदर से वैष्णव की ओर लेके आए वो। तो इसे चैतन्य महा इसीलिए जब हम चैतन्य चरितमानस पढ़ते हैं कि वल्लभ भट्ट ने सोचा कि ये मायावाद तात्पर्य लिखा है भागवत पे, तो इसीलिए इसका खंडन करना चाहिए। पर आप जानते हैं वो लीला, जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे तो वल्लभ भट्ट वहां पे आए और वो बोले कि मैंने ऐसा तात्पर्य लिखा है कि मैंने श्रीधर स्वामी का खंडन किया है, तो वो सोचे थे कि श्रीधर स्वामी मायावादी है इसीलिए उनका तात्पर्य खंडन करना चाहिए, यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। पर चैतन्य महाप्रभु जो थे वो श्रीधर स्वामी के हृदय को जानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो स्वामी को नहीं मानता है, स्वामी यानी पति होते हैं, स्वामी को नहीं मानते हैं वो स्त्री वेश्या हो जाती है। तो वल्लभ भट्ट को बहुत बुरा लगा कभी, तो वो चैतन्य महाप्रभु वास्तव में श्रीधर स्वामी के हृदय को जानते थे। तो श्रीधर स्वामी की अभी जो हम बाकी सब पुराण है, अधिकांश पुराणों पर कोई भाष्य लिखा ही नहीं है, पद्म पुराण पे एक दो भाष्य है, विष्णु पुराण पे एक दो भाष्य है, जो श्री संप्रदाय में है वो विष्णु पुराण को महान मानते हैं, उसको पुराण रत्न कहते हैं, जैसे हम भागवतम ग्रंथराज कहते हैं तो विष्णु पुराण पे कुछ तात्पर्य है, पर बाकी सब पुराणों पे कोई तात्पर्य नहीं है। पर भागवतम ऐसा ही एक पुराण है जिसपे 70 से अधिक तात्पर्य लिखे हुए हैं, तो जितने भी तात्पर्य लिखे हैं उनमें सबसे प्राचीन तात्पर्य जो है श्रीधर स्वामी का है। फिर उसके बाद में हमारे संप्रदाय में सनातन गोस्वामी ने दशम टिप्पणी लिखी है, दशम टिप्पणी एक लघु है एक बृहत है, दशम स्कंद में तात्पर्य लिखा है। जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ लिखा है, उनके शब्द संदर्भ जो है जो भागवतम का तत्वज्ञान है उसका विश्लेषण करते हैं, पर जो क्रम संदर्भ है उसमें हर एक श्लोक को लेकर उन्होंने उस पर थोड़ी टिप्पणी लिखी है, सब श्लोकों पे नहीं लिखा है, कुछ कुछ श्लोकों पे लिखा है। और जो प्रधान तात्पर्य जो लिखा है भागवतम पे वो है चक्रवर्ती पाद ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने जो तात्पर्य लिखे है वो बहुत रसिक है, बहुत सुंदर तात्पर्य है। और फिर उसके बाद में श्री भक्ति सदान सिंह ठाकुर ने भागवत विवृत्ति लिखी थी, जो भागवत विवृत्ति है वह बड़ी जटिल है, तो अभी तक भाषांतर उसका हुआ नहीं है, विश्वनाथ ठाकुर के भागवतम का भाषांतर अभी हो चुका है। और जो प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने भागवतम पे तात्पर्य नहीं लिखा है डायरेक्टली, उन्होंने भागवतम का एक विश्लेषण किया है भागवत अर्कमरीचि माला में, पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे वो पूर्व आचार्यों के जो ग्रंथ थे उनका विस्तारित रूप से अध्ययन करके और फिर उससे हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, क्योंकि कृष्ण भावना ये तो असीमित है, जैसे कृष्ण असीमित है कृष्ण भावना भी असीमित है, तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वह उन्होंने उनके तात्पर्यों में हमें दिया है। तो प्रभुपाद जी साधारणतया उनके तात्पर्य में प्रधान रूप से श्रीधर स्वामी से लेते, प्रभुपाद जी ने एक जब वो अपने शरीर को त्यागने वाले थे, जो प्रद्युम्न प्रभु प्रभुपाद जी के संस्कृत एडिटर थे, तो उनको उन्होंने बताया कि वो तात्पर्य कैसे लिखते हैं, तो वो वेदाबेस में अभी तक है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्रीधर स्वामी जो तात्पर्य है वो हमारे प्रधान है, और श्रीधर स्वामी का प्रभुपाद जी भाषांतर करते थे, उसको तात्पर्य लिखते थे, उसके साथ साथ दूसरे आचार्य से कुछ डालते थे, और जो खुद वो संदेश देना चाहते थे भक्तों को वो भी डालते थे। तो वही जो पद्धति है हृदयानंद महाराज ने आगे के अध्यायों में की है 14 के बाद में। तो प्रभुपाद जी का जो कृष्णा बुक है उसमें 90 अध्याय नहीं है, 89 अध्याय है, जबकि दशम स्कंद में 90 अध्याय है। उसका कारण यह है कि जो रास पांचाध्याय है तो उसमें दो अध्यायों को प्रभुपाद जी ने एक कर दिया है, तो उसको फिर विश्लेषण करके बीबीटी के सेकंड एडिशन में दो अध्याय कर दिए हैं, तो इसलिए अभी जो नया कृष्णा बुक आया उसमें 90 अध्याय, पहले कृष्णा बुक में 89 अध्याय थे। पर इस सब में महत्वपूर्ण यह है, तो एक प्रकार के जो ग्रंथ हमारे आचार्य लिखे है वह है कि श्लोकों पे तात्पर्य, दूसरे है कि इन लीलाओं का उनको जो साक्षात्कार हुआ है उसके आधार पर उन्होंने उसका विस्तारित वर्णन किया है। तो ऐसे दो प्रकार के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, श्री जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू लिखा है और कवि पर्णपुर ने आनंद वृंदावन चंपू लिखा है। अभी चंपू ये शब्द का अर्थ होता है कि ऐसी एक रचना जिसमें गद्य भी है और पद्य भी है, कविता भी है और साधारण वार्तालाप भी है, तो उस प्रकार के विशिष्ट नियमों के साथ जो रचना कहते उसको चंपू कहते हैं। तो आनंद वृंदावन चंपू में केवल वृंदावन लीला का वर्णन है, और गोपाल चंपू जो है उसमें वृंदावन तथा द्वारका लीला दोनों का वर्णन, दोनों बहुत आनंद चंपू बहुत मधुर पुस्तक है। अगर समय मिलेगा तो अंत में एक दो कहानियां उसमें से बताऊंगा। और जो गोपाल चंपू है वह है उसमें बहुत सारा जो डिटेल्स है मैंने बहुत सुंदर रूप से जीव गोस्वामी पाद ने बताए हैं। और फिर तीसरे प्रकार के जो ग्रंथ है वह बहुत रसिक हो जाते हैं, वो खास करके जो हमारे संप्रदाय में माधुर्य रस, माधुर्य रस भी परकीय भाव में माधुर्य रस जो है उसका वर्णन है, उस पर विश्लेषण किया है। तो मतलब रास पंचाध्याय का जो विस्तारित वर्णन है वो प्रबोधान सरस्वती ने संगीत माधव में, विश्वनाथ शेखर ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत महाकाव्य में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत में, इन सब ग्रंथों में भी किया है। और खासकर ये माधुर्य रस की जो लीलाएं है वह हमें बड़ी सावधानी से पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी भौतिक चेतना है तो हम भगवान की लीलाओं को भी भौतिक दृष्टि से देखते हैं। पर प्रभुपाद जी अपने भागवतम के पहले तात्पर्य में लिखते हैं कि उनकी इच्छा थी कि उनके जो शिष्य है गंभीर शिष्य सीरियस स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वो ये तात्पर्य पढ़ने के बाद दशम स्कंद के जो उन्होंने तात्पर्य दिया उसके पढ़ने के बाद पूर्वाचार्य के तात्पर्य भी पढ़े। तो हम सबको तो संभव नहीं है, पर जो भी हम कृष्ण भावना है हमें पूर्वाचार्य की चर्चा क्यों कर रहे हैं, हमें समझने के लिए कि कृष्ण भावना कितना ऐतिहासिक रूप से भक्तों के साक्षात्कार से भरी हुई है और खास करके कृष्ण लीला। तो ये दशम स्कंद का इतना विशेष क्या है कि इतने सारे आचार्यों ने इस पर टिप्पणी लिखी है? तो दशम स्कंद जैसे मैंने कहा कि खास करके पहले 40 अध्याय वो भगवान जब घर में थे, गॉड एट होम, उसका वर्णन करते हैं। भगवान जब घर में है, भगवान घर में क्या करते हैं उसका वर्णन है। तो अगर हम दूसरे धर्मों में भगवान की संकल्पना के बारे में थोड़ा विचार करते हैं तो भगवान कौन है इसका स्पष्ट वर्णन नहीं है। तो वास्तव में जो इटली में एक विशाल चर्च बनाया था सिस्टीन चैपल नाम का, तो अभी माइकल एंजेलो को बताया गया कि आप इसमें भगवान कैसे अपनी कृपा मानव पर देते हैं, प्रदान करते हैं, उसका वर्णन करो, उसका चित्रण करो। तो उन्होंने शुरू किया तो एक मानव को सुंदर एडम, वो जब पुरुष और स्त्री को बना देते तो एडम और मैडोना, ऐसे तरह से सुंदर पुरुष और सुंदर स्त्री बना देते। वो तो पुरुष बनाया उन्होंने, स्त्री जब बनानी थी तो सॉरी पुरुष बनाया उन्होंने, भगवान को जब बनाना था तो भगवान कैसे दिखते कुछ पता ही नहीं उनको। तो फिर उन्होंने वहां के जो पोप थे उनको, वहां के उनके जो बिशप थे उनको पूछा, फिर उसके ऊपर से पोप तक गए, किसी को पता नहीं। तो फिर उन्होंने अपना तर्क वितर्क किया और सोचा कि भक्त भगवान सबसे आदि है तो इसलिए भगवान बूढ़े हो गए, इसलिए भगवान को दाढ़ी और बूढ़े व्यक्ति से बनाया है। अब बूढ़े व्यक्ति अपने हाथ आगे कर रहे हैं और जो मानव उसके हाथ ले रहा है। तो अभी वो चित्र को देखते हैं तो उसमें मानव भगवान से ज्यादा आकर्षक लगते हैं और लगता है कि मानव भगवान को आश्रय दे रहे हैं न कि भगवान मानव को आश्रय दे रहे। तो ये दुर्भाग्य है। ब्रह्म समुदाय ने बताया कि हाँ जरूर सत्य है कि भगवान पुरातन है, आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, वो आद्यम है पर उनपे काल का कोई प्रभाव नहीं होता है, ऐसे बताया गया है। ध्यानचंद्र गोस्वामी जी ने बताया है कि भगवान कृष्ण का की सनातन उम्र 15 साल 6 महीने और 3 दिन है, इटर्नल एज। अब इटर्नल एज का मतलब क्या हो सकता है? सनातन उम्र, राधा रानी की उम्र 14 साल 3 महीने 4 दिन है। तो ऐसे एग्जैक्ट नहीं हो ऐसे कुछ तभी कि 3 दिन 4 दिन कुछ अलग हो सकता है वो, पर यहाँ पे पॉइंट ये है कि उनका वो उम्र है उनकी, पर उम्र ऐसी है कि आध्यात्मिक जगत में सुबह 5 बजते हैं, शाम के 5 बजते हैं, रात के 12 बजते हैं, सब समय जाता है पर समय से किसी के शरीर का प्रभाव नहीं होता है। तो समय है ऐसे निमेशादाख्यो वा व्रजति नहीं अत्रापि समये, कि निमेश मात्र का काल भी जाता नहीं है। उसका मतलब क्या है कि उतना भी शरीर का क्षय नहीं होता है। समय तो जरूर है आध्यात्मिक जगत में, गोविंद लीलावृत में विस्तारित रूप से बताया कैसे कि भगवान किस समय कौन सी लीला करते हैं। भगवान का भी शरीर होता है पूरा, सुबह 5:42 से 8:32 तक भगवान की शतमाई के साथ लीला होती है, फिर 8:33 से 11:22 तक फिर वो अपने गोपों के साथ लीला करते हैं, फिर उसके बाद में उनका लंच टाइम होता है। तो भगवान पूरा शेड्यूल पे चलते हैं, पूरे स्वतंत्र है वे। पर तो भगवान समय जरूर है आध्यात्मिक जगत में, पर आध्यात्मिक जगत में समय किस लिए है? वो उससे कुछ क्षय नहीं कराता है, सिर्फ जो परिवर्तन कराता है, देयर इज चेंज बट नो डिटेरियोरेशन। परिवर्तन होता है पर क्षय नहीं होता है। उससे कि भगवान अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग प्रकार की लीला कर सकते हैं। तो यह जो विस्तारित वर्णन है भगवान का वह और कोई शास्त्र में नहीं है वास्तव में। तो जो इस्लाम है उसमें तो भगवान के रूप के बारे में वर्णन है, पर थोड़ा बहुत वर्णन है, पर कुछ विस्तारित रूप से वर्णन है ही नहीं। और अधिकांश मुस्लिम लोग सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप है ही नहीं। वो सोचते हैं कि भगवान का अगर हम रूप देते हैं तो भगवान को हम लिमिट कर देते हैं, भगवान को हम संकीर्ण बना देते हैं। पर वास्तव में यह भौतिक विचारधारा है। हम सोचते हैं कि भगवान का शरीर हमारे जैसा है, तो ये जो इसका जो विरोधाभास है, जैसे अभी ये कमरा है, ये कमरा इसका कोई रूप है, इसीलिए उसकी जो मात्रा है वो सीमित है। तो वो सोचते हैं कि वैसे ही भगवान का कोई रूप होगा, वो व्यक्ति यहां बैठा है तो वहां नहीं है, वहां है तो यहां नहीं है, तो रूप है तो वो सीमित हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को आप सीमित मत करो, इसलिए आप रूप मत दो भगवान को। पर वास्तव में ये भौतिक विचारधारा है, क्योंकि ठीक है मान लीजिए कि अगर कोई सीमित होने से चीज, कोई रूप होने से चीज सीमित हो जाती है। ठीक है मान लीजिए हम किसी बम से एक घर को उद्ध्वस्त कर देते, तो घर का रूप उद्ध्वस्त हो गया। पर रूप उद्ध्वस्त होने के बाद जो घर बनाया था जिन चीजों से, वो जो मात्रा है वो सीमित रहेगी या असीमित हो जाएगी? घर जब टूट जाता है तो घर की जो मिट्टी है या उसके जो कंक्रीट है, उस सब की मात्रा सीमित रहेगी या असीमित होगी? सीमित ही रहेगी। मतलब क्या कि जो भौतिक, जो हम रूप हो या रूप ना हो, भौतिक तत्व हमेशा सीमित रहता है। तो भगवान असीमित क्यों है, न कि वो रूप है या रूप नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। भगवान असीमित है कि क्या सबूत, क्या सबूत है इसका कि वे आध्यात्मिक है। तो ये आध्यात्मिक जो रूप है वह समझना बड़ा मुश्किल है। तो अपनी सर्वसंवादिनी टीका में जीव गोस्वामी सुंदर तर्क बताते हैं कैसे समझना कि भगवान का रूप है। वो कहते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि तीन प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। वास्तव में 10 प्रमाण है, तो उसको हम संकेत करते हैं तो 3 बन जाते हैं। तो एक प्रमाण है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति मतलब जब दो विरुद्ध वाक्य है, दो अगर विरुद्ध विधान है तो उनको समझना कैसे, इसके लिए अर्थापत्ति की जाती है। मान लीजिए शास्त्र में प्रधान उदाहरण मीमांस में आता है ये कि देवदत्त दिन भर कुछ भी नहीं खाता है, ये एक विधान है। दूसरा विधान है देवदत्त का वजन बढ़ रहा है। तो अब ये दो विधान है विरुद्धाभासी। अगर कुछ भी नहीं खा रहा है तो उसका वजन कैसे बढ़ सकता है? तो इसके अर्थापत्ति, ये दोनों का समन्वय करने के लिए हमें अर्थापत्ति करनी चाहिए। अर्थापत्ति मतलब क्या, ऐसा कोई प्रस्ताव रखना चाहिए जो इन दोनों का समन्वय कर सकता है। तो क्या है, देवदत्त दिन भर कुछ नहीं खाता है, देवदत्त का वजन बढ़ रहा है, इसकी अर्थापत्ति कैसे होगी? देवदत्त रात को छुपके खाता है। तो ये उदाहरण हास्यास्पद है, पर इसका तात्पर्य क्या है कि अगर दो विरोधरूपी विधान है तो उनका समन्वय जो करना है उसके लिए अर्थापत्ति कहती है। तो उपनिषदों में बताया गया है कि अस्पर्शम अरूपम, इस प्रकार के जो उपमा है भगवान को दी जाती, विशेषण भगवान के लिए इस्तेमाल, परम सत्य के लिए इस्तेमाल की जाती, अस्पर्शम अरूपम अदृश्यम, कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, भगवान को हम गंध नहीं दे सकते हैं। पर साथ साथ उन्हीं उपनिषदों में, जैसे ये श्लोक केन उपनिषद में, चांडोग्य उपनिषद में है कि सर्व काम सर्व कर्म सर्व गंध सर्व रूप, ये भी है। तो जो मायावादी लोग हैं वो सिर्फ जो विधान कहते हैं कि परम सत्य का रूप नहीं है उनको ही लेते हैं, वो कहते हैं देखो परम सत्य कोई रूप नहीं है। पर ऐसे भी विधान है जिसमें परम सत्य को रूप है ये बताया गया है। तो दोनों का समन्वय कैसे करना है, उसके लिए अर्थापत्ति है। अर्थापत्ति क्या है कि भगवान का रूप है पर वो भौतिक नहीं है। तो विष्णु पुराण में श्लोक आता है जो कहता है कि जब शास्त्र स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब शास्त्र कहते हैं कि भगवान निर्गुण है, तो उसका मतलब है कि गुण ये शब्द है, इसके दो अर्थ है। इससे बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, इससे उससे क्या होता है, गलत फहमी हो जाती है। तो गुण ये शब्द का एक अर्थ होता है कि क्वालिटी, इसका गुण जैसे शक्कर का गुण मधुरता है, पर गुण का एक और शब्द अर्थ है प्रकृति के तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो शास्त्रों में जब परम सत्य को निर्गुण बताया गया है तो वो निर्गुण क्या है, वो शक्कर का जो मधुरता है वो गुण के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण उनके परे भगवान है उसकी चर्चा है। तो उनके परे है पर भगवान के गुण जरूर है। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर जो वो कहते हैं शास्त्र में निर्गुण जरूर बताया गया भगवान को, इसीलिए उन्होंने नया शब्द इस्तेमाल किया निर्विशेष। प्रभुपाद जी ने अपने जो प्रणाम मंत्र उसमें डाला कि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, जो विशेष मतलब क्या, जो भगवान के गुण है उसको विशेष बताया गया। तो भगवान के गुणों जो नहीं है जो कहते हैं उनका खंडन किया प्रभुपाद जी ने। तो भगवान का दिव्य रूप है, तो यह समझना साधा यहां जैसे यहां पे तत्पर में बताया गया है कि वो जो है मन, बुद्धि और चेतना, इन सब के परे है भगवान को समझना। तो इसके कारण जो बहुत से लोग हैं ना, केवल हम जो वैदिक धर्म जो निर्विशेषवादी है वो, और दूसरे धर्म के लोग भी वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। क्रिस्त धर्म में भगवान की संकल्पना है कि भगवान कोई बहुत गंभीर व्यक्ति है जो जो कोई पाप करता है उस पर वज्र प्रहार करते हैं और उसको नरक में फेंक देते हैं। तो वे जब भारत में आए, दिल्ली में आए, मथुरा में आए और उन्होंने देखा कि छोटा मासूम बालक है माखन खा रहा है, ये कौन है? अरे भगवान है, ये भगवान है। उनके बुद्धि को शॉर्ट सर्किट हो गया, भगवान की संकल्पना उनकी बहुत अलग है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? और भगवान क्या करते हैं? भगवान चोरी करते हैं, भगवान चोरी करते हैं, क्या समझेंगे वो? साधारणतः हमें समझना चाहिए कि क्या है, जो सनातन धर्म है उसमें जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस मतलब दूसरों के मतों को संवेदनशीलता से उससे आदान प्रदान करना, सहनशीलता जो है वह बहुत है। क्योंकि हिंदू धर्म में कैसे है कि आजकल जो हिंदू धर्म है वो सनातन धर्म का एक विकृत रूप है, पर जो भी है उसमें कोई लोग होते हैं विष्णु की पूजा करते हैं, कोई लोग गणेश की पूजा करते हैं, कोई लोग शिव जी की पूजा करते हैं। तो ये सब लोग सोचते हैं कि वास्तव में हाँ ठीक है, मैं भगवान की एक तरह से भक्ति कर रहा हूं और वो भगवान की दूसरी तरह से भक्ति कर रहे हैं। तो शिव जी के तो पुष्कर संहिता में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य चरितामृत में अपना भाष्य लिखा है, गौड़िया भाष्य, तो उसमें बताते हैं पुष्कर, वो पुष्कर संहिता से श्लोक बोलते हैं कि वास्तव में जो अलग अलग पुरुषार्थ है उनके लिए अलग अलग देवताओं की पूजा है। भारत में पंचोपासना की पूजा बताई गई है, पंचोपासना जो है आजकल जो सूर्य, गणेश, शक्ति, शिवजी और विष्णु, इन सब की पूजा बताई गई है। तो ऐसे बताया कि पुष्कर संहिता में बताया है कि अलग अलग जो देवता है अलग अलग पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। जो जिसको धर्म चाहिए वो सूर्य की पूजा करते हैं, जिसको अर्थ चाहिए वो गणेश की पूजा करते हैं, जिसको काम चाहिए वो शक्ति की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, जिसको मोक्ष चाहिए वो शिवजी की पूजा करते हैं, पर विष्णु अकेले हैं जो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। अकाम सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि, शास्त्र में बताया गया है कि जो भी कुछ भी इच्छा नहीं है सब इच्छा है, फिर भी आप भगवान की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो। तो ये जो है कि फिर भी जो हिंदू धर्म है आजकल तो उसमें हम सोचते हैं कि ठीक है ये भगवान का मंदिर है वो किस देवता का मंदिर है, पर सहनशीलता रहती है। पर क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म में ऐसी सहनशीलता नहीं है। अभी हम समझते हैं कि एक ही भगवान है, उसको हम कृष्ण बोलते हैं, वे अल्लाह बोलते हैं, कोई और यहोवा बोलता है, पर वे लोग ऐसे नहीं सोचते। आप अगर देखोगे कई बार कोई क्रिश्चियन मुस्लिम लोग जो कट्टर होते हैं वो अगर हमको प्रसाद देते तो प्रसाद भी नहीं लेते। क्यों नहीं देते वो प्रसाद? क्योंकि वो सोच उनको ऐसे भड़काया जाता है उनके मस्जिदों में या चर्चों में कि हमारे हमें बताया गया वे अकेले भगवान है और बाकी सब जो भी है वे वास्तव में शैतान के रूप है। तो जो बाकी सब है, राधा गोकुलान भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, दाई गौरचंद्र भगवान की, तो उनको ऐसे बताया जाता है कि बाकी सब जो बाकी सब धर्मों में जिसकी पूजा हो रही है वो कोई भगवान नहीं है, वो शैतान के रूप है। भगवान एक ही है जो हमारे धर्म में बताया गया है, और हमारे धर्म के बाहर जो भी है वह सब शैतान ने रूप लिए है भगवान जो भगवान से दूर ले जाने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं इतिहास में कि जब कोई भी मुस्लिम बादशाह किसी हिंदू प्रांत को जीतता था तो पहला चीज जो करते थे वो जाके मंदिरों को उद्ध्वस्त करते। जब इसीलिए देखते हैं हम चैतन्य लीला में भी चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामियों को मंदिर बनाने के लिए बताया, पर इतने सारे उनके पार्षद बंगाल में थे, नित्यानंद प्रभु थे, अद्वैत आचार्य थे, इतने सारे भक्त बंगाल में थे, पर बंगाल में उन्होंने किसी को मंदिर नहीं बनाने को बताया कि बंगाल में तभी नवाब हुसैन शाह का राज्य था और जो वृंदावन में जो था तभी अकबर का राज्य आ रहा था, उस समय जो दिल्ली सुल्तानत था राज्य खत्म हो रहा था, मुगल राज्य चालू हो रहा था, उस समय वे मुस्लिम युद्ध कर रहे थे तो इसलिए वो हिंदुओं के इतने प्रहार नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने मंदिर बनाए, पर तब दो सदी बाद दो पीढ़िया बाद जब विश्वनाथ शेखर ठाकुर वहां पे गए तो उसके बीच में औरंगजेब का राज्य था, सारा वृंदावन उद्ध्वस्त हो गया था। जब विश्वनाथ शेखर ठाकुर गए वहां पे तो कुछ भी नहीं था, वहां पे सब की उन्होंने पुनः स्थापना की। तो ये कहने का ये मतलब नहीं है कि हम मुसलमानों से नफरत करें, क्योंकि वास्तव में जीवात्मा वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, पर जीवात्मा को अलग अलग भ्रांत धारणाओं से गुमराह किया जाता है। तो जो भौतिक माया है वह उसको भौतिकवाद की ओर गुमराह करती है, पर अलग अलग धर्म है वह उसको न केवल भौतिकवाद में फंसाते हैं पर उसको जो सत्य धर्म है उसके खिलाफ भी बहकाते हैं। तो इसीलिए खास करके देखते हैं दक्षिण भारत में जो क्रिश्चियन लोग बहुत से कन्वर्जन कर रहे हैं, तो हमें प्रचार करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि बहुत ही, तो क्या है अगर कोई सत्य में भगवान की खोज में क्रिश्चियन बन रहा है तो कोई उसकी समस्या नहीं है, पर वो अधिकांश रूप से सिर्फ पैसे के लिए बन जाते हैं और सिर्फ पैसे के लिए बनते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में वे जो उनका पुरातन धर्म है उसके प्रति नफरत करते हैं। क्यों, क्या है ये चर्च जो है उन्होंने ऐसे हमारे से दीक्षा होती है, दीक्षा मतलब आप 16 माला जप करोगे और आप 4 नियमों का पालन करेंगे, तो उनमें दीक्षा नाम की कोई विधि नहीं होती है, पर उनमें विधि क्या होती है कि आपको आप जब क्रिश्चियन बन जाते हैं तो आपको सबूत देना चाहिए कि आप क्रिश्चियन बन गए। तो सबूत क्या है आपका कि आप जो पूर्व जो भी धर्म की आराधना कर रहे थे पूर्व धर्म के, उस सब को त्यागना चाहिए। सब चर्चों में, कई चर्चों में ऐसे होता है कि जब वो व्यक्ति चर्च में पहले बार प्रवेश कर रहा होता है तो जो भी उसके घर में देवी देवता या भगवान के चित्र है वो सब चर्च के सीढ़ियों पर रखे जाते हैं, तो उन सब पे पैर रखे उसको ऊपर जाना होता है और सबसे बड़ा जो फोटो होता है उसको फाड़ना, थूकना, जलाना पड़ता है, फिर आप अभी शुद्ध क्रिश्चियन बन गए, अभी आप क्रिश्चियन चर्च में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसीलिए यह हमें कहना इसलिए नहीं है कि हमें उनके प्रति नफरत करनी है, पर हमें हमारे संस्कृति की जो संरक्षण है वह करना बहुत जरूरी है और वह करने के लिए हमें प्रचार करना चाहिए। तो जो भगवान की संकल्पना है वह इतनी गूढ़ है वैदिक शास्त्रों में कि अधिकांश लोग न केवल मुस्लिम या क्रिश्चियन, हिंदू लोग भी समझ में नहीं आते भगवान की संकल्पना को। तो दशम स्कंध जो है बड़ा रहस्यमय है, क्योंकि भगवान के घर में भगवान जो कर रहे हैं उसका वर्णन यहाँ पे हो रहा है। तो अधिकांश धर्म भगवान जो ऑफिस में है, ऑफिस में जैसे राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, कोई सजा देता है किसी को या किसी को कोई बख्शीश देता है, पर तो वही भगवान की धारणा बाकी सब धर्मों में है, पर भगवान घर में प्रेम की लीला आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान ऐसे व्यक्ति नहीं है जो वास्तव में चाहते हैं, जैसे कोई शहर में कोई किसी गली में कोई गुंडा होता है उसका कि साहब मेरे आगे झुकना चाहिए, मैं यहां का दादा हूं। तो भगवान कोई दादा नहीं है, भगवान नहीं चाहते कि सब मेरे आगे झुके, वो कर्तव्य है हमारा, पर भगवान चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। तो ऐसे बताया कि संबंध ज्ञान जो है वो एक चंद्रमा के समान है, कोई अंधेरे में अगर कोई पूरा अंधकार है, हम गोकुलधाम में थे वहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो रात को पूरा अंधकार हो जाता है, तो फिर वो चंद्रमा होती है, चंद्रमा से दिखता है वह थोड़ा। तो जो संबंध ज्ञान है वो चंद्रमा के समान है, तो वो हमें यहाँ पे भौतिक जगत है, यहाँ पे आध्यात्मिक जगत है, तो ये चंद्रमा है, हमें संबंध ज्ञान भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत ले जाती है, पर आध्यात्मिक जगत में संबंध ज्ञान का जो चंद्र है वो डूब जाता है और उसके कारण जो भक्त है उसको याद नहीं रहता है कि स्मरण नहीं रहता है कि भगवान मेरे स्वामी है और मैं उनका दास हूं। यशोदा माई भूल जाती है कि भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान सर्वशक्तिशाली है, वो सोचती है ये मेरा पुत्र है, ये खाना नहीं खाएगा तो जीवित कैसे रहेगा। तो जब कृष्ण माखन चुराते हैं। तो कई बार जो गोपियां है उनका शिकायत करने आती है, तो ये जो शिकायत करने आती है तो कृष्ण बोलते हैं मैया मैंने कुछ नहीं किया। तो कृष्णा बोलती है देखो मेरा कान्हा कितना मासूम है, कुछ नहीं करता है वो, तुम खामखा उसके ऊपर शिकायत करती हो। तो यशोदा कान्हा कृष्ण पर खुश हो जाता है, तब आकर गोद को पकड़ लेता है वो। तो इस समय अपनी आंखें थोड़ी सी झुकाती है और बोलती है रोहिणी माता को लेकर आती है उनको, उनकी ओर लेकर आती है सारी गोपियों के। तो रोहिणी जो होती है सब गोपियों को चंदन लगाती है, माला पहनाती है, स्वादिष्ट प्रसाद खिलाती है और बोलती है मेरे कान्हा का बहुत डांटा तुमने, अभी तुम जा सकती हो। और फिर जब चले जाते हैं तो कान्हा बड़ा खुश होता है। तो यशोदा माई बोलती है कि कान्हा तुम बड़े लालची हो, तुम्हारे लाल तुम अपने लालच के कारण अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। अभी भगवान सबको इंद्रियों को नियंत्रण करने की शक्ति देते हैं, पर तुम अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर सकते। अभी तुम अपने घर में चोरी करोगे तो ठीक है, पर वहां अगर तुम बाहर जाके करोगे तो तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। अभी कान्हा 3 साल का है, अभी थोड़ा थोड़ा बोल पाता है। यशोदा माई क्या सोच रही है, तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा तो फिर कौन उनकी बेटी तुम्हें शादी में देगा।
तो माता पिता ऐसे ही होते, छोटा 3 साल का बच्चा होगा तो उनकी शादी कैसे होगी, उसकी चिंता करते रहते। तो
जो है यशोदा माई वो कभी सोचती नहीं है, वो सोचती है कि मुझे कृष्ण को अनुशासन करना चाहिए, दंड देना चाहिए ताकि वह अच्छा अच्छा व्यक्ति बने। तो ये जो लीला हो रही है अभी, ये इस लीला में क्या होता है, भगवान एक छोटे नन्हे बालक के समान भूमिका निभाते हैं। भूमिका क्यों निभाते हैं, क्योंकि वे प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। अगर सब भक्त हमेशा याद रखते हैं उनको कि ये भगवान है, ये भगवान है, भगवान है, तो फिर वो उनसे प्रेम कैसे करेंगे, भय लगा रहेगा, तो थोड़ा डर लगा रहेगा। भगवान वो डर चाहते नहीं है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जगत में योग माया है, भौतिक जगत में महामाया है। ऐसे कभी भौतिकवादी लोग हम अगर कहते हैं कि हाँ जो वृंदावन वासी है वो भगवान को, वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, तो कोई भौतिकवादी लोग कहेंगे कि हम भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, पर इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो ब्रजवासी है वो योग माया से आवृत है, और जो भौतिकवादी के लोग है वो महामाया से आवृत है। और ये योग माया का आवरण क्या है कि ये जो भगवान की लीला है ये बहुत ही जटिल तत्व है, लीला को समझना आसान नहीं है। तो प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य गरुड़ प्रभु, उन्होंने रास पंचाध्याय का बड़ा विस्तारित वर्णन किया है, उसमें उन्होंने अपना PhD किया है और उससे एक बड़ा सुंदर ग्रंथ भी लिखा है, पूर्व आचार्य के कमेंट किया श्रीधर स्वामी चक्रवर्ती पाद और जीव गोस्वामी ने, खास करके दशम पंचाध्याय उस पर तात्पर्य लिखा है उन्होंने, तो उसके तात्पर्य आधार पर उन्होंने ग्रंथ लिखा है। तो उसमें वो सुंदर उपमा उदाहरण देते हैं समझाने के लिए कि लीला क्या है। ऐसे कोई अमीर व्यक्ति होता है, वह अपना मित्र परिवार के साथ मिलता है, वैसे चलो हम नाटक करते हैं, तो नाटक में भिखारी बन जाता है, भिखारी का अनुभव बोलता है कुछ खाने को दो, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, उसी दिन में 3 बार खा चुका है वो। पर नाटक करता है, सबको बड़ा आनंद आता है उसमें। तो वैसे ही भगवान इस तरह से नाटक करते हैं, पर नाटक के शब्द हमें बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए कि नाटक ये शब्द इस्तेमाल करते हैं हम, तो नाटक का अर्थ होता है कि मिथ्या, सत्य नहीं है, शाश्वत सत्य नहीं है। तो इसीलिए भगवान की लीला है, इट इज अ इटर्नल ड्रामा, ये शाश्वत नाट्य है, इटर्नल ड्रामा है वो। और उसमें कैसे है कि भगवान जो है वे प्रधान कलाकार है, उसके हीरो है वो, और जो अभी नाटक होता है तो उसमें एक डायरेक्टर होता है, वो डायरेक्टर सबको डायरेक्ट करता है कि आप ऐसे कार्य, आप ऐसे हाथ उठाओ, आप ऐसे बोलो, आप ऐसे रो, आप ऐसे नाचो। तो जो डायरेक्टर है वो योग माया है, तो योग माया भगवान को भी डायरेक्ट करती है। तो इसलिए जब रास पंचाध्याय शुरू होता है 29वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी महत्वपूर्ण श्लोक का इस्तेमाल करते हैं, वे कहते हैं योग माया उपाश्रितम, कि भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। अभी हम सब माया के परे जाने के लिए भगवान का आश्रय लेते हैं, तो भगवान योग माया का आश्रय कैसे ले सकते हैं, तो फिर भगवान परम पुरुषोत्तम नहीं रहे, योग माया परम पुरुषोत्तम हुई नहीं। सुंदर उदाहरण है कि योग माया डायरेक्ट कर रही है और भगवान डायरेक्ट हो रहे हैं, योग माया नचा रही है, भगवान नाच रहे हैं, तो भगवान योग माया के नियंत्रण में आ गए, तो फिर भगवान सर्वश्रेष्ठ कैसे रहे। नहीं, जो डायरेक्टर होता है वो डायरेक्टर जो निर्देशक होता है वो निर्देशन कैसे करता है, एक स्क्रिप्ट के आधार पर करता है, जो नाटिका का जो लिखा होता है स्क्रिप्ट उसके आधार पर, हाँ इसको आप ऐसे बोलो, आप ऐसे करो। और जो भगवान की लीला है उसका स्क्रिप्ट कौन लिखते हैं, भगवान ही लिखते हैं। तो भगवान स्क्रिप्ट राइटर है, योग माया डायरेक्टर है और भगवान हीरो है। तो भगवान नियंत्रण में नहीं है क्योंकि वह योग माया के अनुसार कार्य कर रहे हैं, पर योग माया उनके अनुसार कार्य कर रही है इसलिए वह नियंत्रण में भी है। तो यह है अचिंत्य भेदाभेद, भगवान नियंत्रण में भी है, नियंत्रण में भी नहीं है। तो इस तरह से जो लीला है वह भगवान खुद को ढक लेते हैं ताकि वे भूल जाए कि कौन है मैं, कौन है मैं, समझ नहीं आएगा। वो खुद भूल जाते हैं, भक्त भी भूल जाते हैं, पर वो भूल जाते हैं इस तरह से कि जब चाहे वो अपना स्मरण शक्ति वापस आ सकते हैं। इसीलिए हम दामोदर राष्ट्रकम में गाते हैं, दामोदर राष्ट्रकम में सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर टिप्पणी लिखी है, ऐसे उसमें बताया गया है, कुबेरात्मज बद्ध मूर्त्य यद्वान त्वया मोचितौ त्वया मोचितौ। तो आपने मुक्त किया, पर कैसे मुक्त किया, बद्ध मूर्त्य यद्वान, आप बंधे थे पर आपने मुक्त कर दिया। तो कैसे संभव है कि अगर कोई बंधा है तो मुक्त कर सके, तो वास्तव में ये बंधन केवल योग माया है। और भगवान जब चाहे अपनी सर्वशक्तिमत्व का प्रदर्शन करते हैं और जब चाहे सर्वशक्तिमत्व को ढक देते हैं, जब चाहे उनकी स्वेच्छा के अनुसार। तो यशोदा माई अभी आ गई है और वो देख रही है, कान्हा तूने मिट्टी खाई है, नहीं खाई है, अरे पर सारे गोप बोल रहे हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं। तो पर बलराम जी बोल रहे हैं, तो बलराम जी बड़े भाई है। अभी गोपाल सिंह में बताया गया है कि भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो कृष्ण बलराम हमेशा साथ में रहते थे, तो जब उनका नामकरण हुआ तो जब उनको बुला देते कृष्ण, तो दोनों छोटे बालक देखते किसको बुला रहे हैं, राम, तो दोनों देखते थे। फिर यशोदा बाई रोहिणी माई देख रहे हंसते थे, वो समझ गए कि दोनों समझेंगे नहीं किसका किसका नाम क्या है, इसलिए दोनों को फिर दूर रखने लग गए। और दूर रखने लगे फिर कृष्ण, फिर दोनों मुड़के देखते थे, फिर देखते अरे कृष्ण की ओर गए, फिर राम, फिर दोनों मुड़के देखते थे राम की ओर गए। तो धीरे धीरे समझ लगे मेरा नाम राम है, इनका नाम कृष्ण है। तो फिर उसके बाद में कृष्णा बलराम जी बोलने लग गए, तो फिर कृष्ण मा मा दा दा बोलने लगे, फिर वो एक दूसरे के नाम बोलने लगे। तो अभी कृष्ण बोला थोड़ा मुश्किल है, तो कान्हा बलराम जी बोलते थे। और गोपाल जी हमें बताते कि कृष्ण बलराम जी को बलराम कभी नहीं बोलते थे, राम भी नहीं बोलते थे, बोलते दाऊ जी। तो ये जो है क्योंकि तो बड़े भाई है तो बड़े भाई का आदर रहता है, तो हमेशा जो हमसे बुजुर्ग है उनको आदर पूर्वक संबोधन करना चाहिए। एक अमेरिका से कोई भक्त आया था, उनके परिवार वाले लेके आए थे मुझे, बोले तो एक युवक था, बोले आई जस्ट गेट टॉमी, टॉमी को लेके आऊंगा। मेरे को टॉमी कौन, उनका कुत्ता है या क्या है? तो टॉमी उनके दादा का नाम था, टॉमी को लेके आऊंगा मैं। तो ये बहुत जो संस्कृति का विनाश है आजकल, जैसे हम देखते हैं कि जो पत्नी है अपने पति को उनके नाम से बुलाती है, और जो बेटा है अपने पिता को अपने नाम से बुलाता है, ये कोई आदर्श नहीं है। संस्कृति मतलब हम आदर किस तरह से देते अलग अलग को। तो जो कृष्ण है वो बलराम जी को दाऊ जी बुला करते थे, सिर्फ अगर कोई राज दरबार में बात कर रहे हैं तभी आदर से बलराम जी बोलेंगे। तो यहाँ पे तो इसीलिए यशोदा माई को भी लगता था कि ये कृष्ण बलराम जी का आदर करते हैं, नहीं बलराम जी भी बोल रहे कि तुमने माखन खाया है। तो कृष्ण बोले कि कान में कुछ बताना चाहता हूं। तो अभी बलराम जी समझ गए ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, तो वो तुरंत आ गए, नहीं नहीं मत सुनो। तो फिर कृष्ण यशोदा माई के कान में बोले कि मैया कल दाऊ जी ने माखन खाया, कल दाऊ जी ने मिट्टी खाई थी, तो मैं तुमको बताने ही वाला था, पर मैं तुम्हें बताने के पहले उन्होंने मुझ पे ही झूठा इल्जाम लगा दिया है। तो यशोदा माई ने सुना तो सोचने लग गई। तो अभी जब उन्होंने देखा, बलराम जी ने देखा कि ये कृष्ण कान्हा ने कुछ तो गड़बड़ किया है अभी, तो मैया अगर तुम्हें मुझे विश्वास नहीं है तो उसको मुंह खोलने को बोलो। तो बोलो ठीक है मुंह खोलो। तो अभी कृष्णा ने बोला कि ठीक है, तो कृष्णा ने मुंह खोला, और जैसे ही मुंह खोला तो यशोदा माई ने मिट्टी देखी उसके मुंह में। जब मिट्टी देखी तो उनके आंखें बड़ी हो गई। और फिर जब अभी क्या था, कृष्ण यहाँ पे थे, यशोदा माई यहाँ पे थे, बलराम जी यहाँ पे थे, तो यशोदा माई कृष्ण के मुंह में देख रही थी और बलराम जी बलराम जी यशोदा माई की ओर देख रहे थे। तो यशोदा माई ने देखा कृष्ण के मुंह में मिट्टी, तो एकदम पकड़ लिया। तो बलराम जी ने देखा कि यशोदा माई की आंखें भी बड़ी हो गई है,
हाँ अभी पकड़ लिया, वो भी खुश हो गए।
तो कृष्ण ने यशोदा माई के मुंह को देखा,
पकड़ा जाऊंगा मैं अभी, तो तुरंत क्या कर दिया,
मिट्टी को गायब कर दिया और सारे ब्रह्मांड को प्रकट कर दिया उन्होंने। सारे ब्रह्मांड को प्रकट कर दिया तो यशोदा माई एकदम मोहित, ये क्या है। और न केवल उन्होंने ब्रह्मांड देखा, ब्रह्मांड में उन्होंने वृंदावन को देखा, उन्होंने वृंदावन में उनको खुद को देखा और उन्होंने अपने बालक को भी देखा कि वो अपने बालक के मुंह में देख रही है। तो कैसे संभव है ये? ये अचिंत्य है, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो अब यशोदा माई एकदम मोहित हो गई है और वो प्रार्थनाएं अर्पण कर रही है। और प्रभु जी यहाँ पे बहुत सुंदर तात्पर्य बताते हैं कि न केवल वो जो प्रभुपाद जी का जो विशेष गुण क्या था कि वो जो तात्पर्य थे, जो दिव्य स्तर पर लीला चल रही है उसको व्यावहारिक स्तर पे हम कैसे समझ सकते हैं वह हम बताते हैं। वो कि दिव्य स्तर पे भगवान कार्य कर रहे हैं, भगवान जो कार्य कर रहे हैं वो हम समझ नहीं सकते। तो प्रभु जी बोलते हैं अगर हम समझ नहीं पाए कि क्यों ऐसे हो रहा है तो हमें सिर्फ भगवान का नमन करना चाहिए, उनसे प्रणाम करना चाहिए। न तो उसमें से बताया यहाँ पे। तो वैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे नहीं है कि भगवान की लीला आध्यात्मिक जगत में भी चल रही है। तीसरा स्कंद जो है भागवतम का, उसमें विस्तारित रूप से सृष्टि की लीला चल रही है, सृष्टि का वर्णन है। तो सृष्टि का वर्णन क्यों है, तभी प्रभुपाद जी बताते हैं, चक्रवर्ती पाद भी बताते हैं पहले, कि जो सृष्टि है वह सृष्टि का सृजन पालन और संहार ये भी भगवान की लीला है। ये भगवान की कैसे लीला है, ये भगवान जो पुरुष अवतार है महाविष्णु गर्भोदक्षा विष्णु शिवदक्षा विष्णु उनकी लीला है। तो ये भी भगवान की लीला है, वह भी हम कुछ समझ पाते हैं कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती है जो हम समझ नहीं पाते हैं। हम कोई अच्छा खासा सेवा कर रहा है उसको बीमारी हो जाती है, कोई अच्छे मित्र है भक्ति में अचानक कोई गलतफहमी आ जाती है। तो फिर जब ऐसे हो जाता है, जब कोई ऐसा कार्य होता है जिसका हम कारण समझ नहीं पाते, तो प्रभुपाद जी बोलते हमें क्या करना चाहिए, नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, भगवान जो आपकी इच्छा है मैं आपका सेवक हूं। तो ये बड़ा मुश्किल है। क्या है कि जो भी कार्य घटता है उसके तीन स्तर पे कारण होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इमीडिएट कॉज, रिमोट कॉज, अल्टीमेट कॉज। इमीडिएट कॉज मतलब जो प्रथम जो कारण दिखता है हमको, और उसके पहले दूर का कारण, और सबसे अंतिम कारण जो है। ऐसे है किसी को मलेरिया हो गया, तो मलेरिया हो गया तो उसका सबसे निजी कारण क्या है, उसको ये मच्छर ने काट लिया है। तो अगर हम विज्ञान के पास जाएंगे तो विज्ञान इसी स्तर पे जाता है, आपको मलेरिया क्यों हो गया, एक मच्छर ने काट लिया। ठीक है, पर मैं जिस कमरे में रहता उसमें 25 और भक्त थे, 25 और लोग थे, उनको क्यों नहीं काटा, मुझे ही क्यों काटा, नहीं उनको भी काटा पर आपको मलेरिया हो, क्यों, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम थी। पर सबने उतना ही अन्न खाया है, वही अन्न खाया है, नहीं फिर भी आपकी इम्यूनिटी कम थी। अगर हम उनकी जो इम्यूनिटी शरीर की प्रतिकार शक्ति है उसका अगर हम गिनती करने जाएंगे तो कई बार ऐसे होता है कि जो प्रतिकार शक्ति है वो समान भी होगी फिर भी एक व्यक्ति को बीमारी होगी दूसरे व्यक्ति को बीमारी नहीं होगी। तो जो इमीडिएट कॉज है, जो प्रथम कारण है, वो सत्य कारण है पर वो पूर्ण कारण नहीं है, वो अपूर्ण कारण है। तो वास्तव में वो मच्छर आके हमें क्यों काटा, क्योंकि वो मच्छर के हृदय में परमात्मा बैठे है और परमात्मा ने बोला कि इस जीवात्मा पिछले जन्म में कुछ पाप किया है, इसको अभी मलेरिया करने देना चाहिए, तो जाओ इसको काटो तुम। तो हमारे पूर्व जन्म का जो कर्म है वह उसका द्वितीय स्तर का कारण है। प्रथम स्तर का कारण क्या है, मच्छर काटा मुझे। द्वितीय स्तर का कारण क्या है कि हमारे पूर्व जन्म का कर्म है। पर इसके परे एक तृतीय स्तर का कारण है, जो अंतिम कारण है वो है भगवान की इच्छा, उपद्रष्टा अनुमंता च। तो जो भौतिक विज्ञान है वो केवल प्रथम स्तर के कार्य पर कारण कर, प्रथम स्तर के कारण पे कार्य करने का प्रयास करता है, उस पर पूरी तरह से यशस्वी नहीं होता है, कई बार बीमारियों को ठीक नहीं कर पाता। मेरा एक मित्र है, वो बता रहा था कि मुझे, वो डॉक्टर है, कि अभी लगभग 40,000 बीमारियों के नाम वैज्ञानिकों को पता है पर उसमें से सिर्फ 4,000 बीमारियों के लिए दवाइयां है। मतलब बाकी 36,000 बीमारी आपको होगी तो आपको अभी बीमारी है, कृपया अभी आप मर जाओ। कुछ नहीं कर सकते। तो प्रथम स्तर पे जो है उस पर हम ज्यादा कर नहीं सकते, हमें देखना चाहिए क्यों हुआ है, कोई मच्छर ज्यादा है तो हमें कुछ क्लीननेस करना चाहिए। पर अगर हम सिर्फ प्रथम स्तर के कारण पे ही अटके रहते हैं, अगर कोई भक्त हम पे चिल्लाता है, मैंने कुछ नहीं किया, क्यों चिल्ला रहे हैं मुझ पे, अगर हम उसी वही सोच के हम अंदर से खुन्नस करते रहते हैं, अंदर से क्रोधित होते रहते हैं, तो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान का क्या फायदा है। ठीक है वो मैंने कुछ भी नहीं किया होगा, फिर भी वो भक्त ने वैसे किया। क्यों किया? क्योंकि मैंने ही पूर्व जन्म में कुछ कर्म किया था। एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे, और जब प्रवचन दे रहे थे तो अचानक एक व्यक्ति उठ गया और वह कुछ चिल्लाने लग गया। बहुत कुछ चिल्लाने लग गया और प्रभुपाद जी बड़ी शांति से सुन लिया और फिर वो चला गया। फिर उसके बाद भक्तों ने पूछा, प्रभुपाद जी उसने ऐसे क्यों किया? तो प्रभुपाद जी बोले, आई डोंट नो, कृष्णा अलाउड इट सो आई मस्ट एक्सेप्ट इट। बहुत महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी बता के, मुझे पता नहीं, कृष्ण ने इसको इजाजत दी इसलिए मुझे स्वीकार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे हैं, कई बार से भौतिक जगत में होगा कि क्यों एक चीज हो रही है मेरे साथ पता नहीं है मुझे, पर हम यही समझना चाहिए कि अंतिम सर्व कारण क्या है, कृष्ण इसको इजाजत दे रहे हैं। तो वो व्यक्ति भले ही कितना अन्यायपूर्वक हमसे बर्ताव कर रहा है, पर भगवान, हम जानते हैं कि भगवान अन्यायी नहीं है। भगवान इसके लिए इजाजत दे रहे हैं मतलब उसमें कुछ न्याय है। तो हमें ये देखना नहीं है, देखना है कि वो मुझ पर चिल्लाता है तो मैं भी उस पर चिल्लाऊंगा, ये तो भौतिक हो गया। हमें देखना चाहिए कि मैं किस तरह से बर्ताव करूं जिससे कि भगवान प्रसन्न हो और मैं भगवान भक्ति में प्रगति करूं। तो कभी कभी जरूरी है कि हमें चिल्लाना भी पड़ेगा, पर वो जो भौतिक स्तर पर जब कोई वरिष्ठ भक्त होते हैं, कोई नौसिखिया भक्त कोई गलती करते हैं तो शायद क्रोधित हो सकते हैं, वो उनको सिखाने के लिए है, पर उनका क्रोध भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। पर हमें देखना चाहिए कि मैं सिर्फ प्रथम स्तर का कारण है उस पर अटका रहूंगा तो उसका क्या फायदा है। मैं एक बार मायापुर में गया था, तो मायापुर में एक भक्त ऐसा देख रूम में, रशिया से भक्त है वो, तो जो भक्त है वो तो रात भर वो सो नहीं पाए, और रात जब उठे सब एक रूम में, तो सारे शरीर जो थे वो मच्छर से काटे हुए थे, पूरा फोड़े फोड़े हुए थे। बोले प्रभु ये आप सो नहीं पाए? नहीं, मेरे पास मच्छरदानी नहीं थी। बोले बहुत दर्द हो रहा होगा। तो वो क्या बोले, मॉस्किटो बाइटिंग ऑल बैड ब्लड गोइंग, प्रसाद ईटिंग गुड ब्लड कमिंग। वो क्या बोले, अभी मैंने पूरा इतना सारा पाप किया है, मांस खाया है, उससे पूरा दूषित खून आया है, तो अभी मच्छर क्या कर रहे हैं, वो दूषित खून लेके जा रहे हैं, अभी मैं प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, शुद्ध खून आ रहा है। तो ये है दिव्य चेतना, कि हम देख रहे हैं कि हाँ मायापुर धाम में अगर हो रहा है, जो भी हो रहा है वो भगवान की योग माया से हो रहा है। मायापुर धाम में कभी कभी क्या हो जाता है, गंगा माता जो है वो राधा माधव का दर्शन करने आ जाती है। तो साधारण भौतिक भाई लोग, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, भाग जाएंगे। तो मायापुर में भक्त क्या करते हैं, एक बार 3 साल पहले ऐसे शाम को तुलसी आरती चल रही थी और तभी गंगा माता अंदर आ गई, तो भक्तों ने क्या किया, जो आरती की सामग्री था उससे गंगा माता की आरती की। तो भक्त को है भागे नहीं, और पहाड़ आ गई, उन्होंने गंगा माता की आरती की। हमें दिव्य स्तर से देखना चाहिए। हाँ जरूर, ऐसे नहीं कि हमें डूब जाना चाहिए, हमें जो प्रतिकार जो जो को प्रिकॉशन है, जो हमको सावधानी बरतनी चाहिए, पर हमेशा दिव्य चेतना से हमें देखना चाहिए। तो जय निवास लोग बता रहे थे कि अभी राधा माधव का स्थापना होके 2 साल हो गए, गंगा माता को भी उससे विरह हो रहा था, इसलिए वो आ गए अंदर दर्शन लेने के लिए। तो हमें जो भी देखना है, भौतिक स्तर से देखना है, उसका प्रतिकार करना है, जरूरी है। कोई गलत फहमी हो गई तो गलत फहमी को हम सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, बीमारी हो गई तो दवाई लेनी चाहिए, पर उसके साथ साथ दिव्य स्तर पर देखना चाहिए कि जो भी कर रहा है हो रहा है भगवान की इजाजत से हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि मैं भक्ति में प्रगति करूं। तो मैं किस तरह से चेतना से उसका उसके सामने जाऊं, किस तरह से उसे देखूं, किस तरह से उसे प्रतिक्रिया करूं जिससे कि मैं प्रगति कर सकता हूं। तो आखिर हम प्रभुपाद जी के जीवन से देख सकते हैं कि सब कुछ प्रभुपाद जी का उध्वस्त हो गया। प्रभुपाद जी ने अपना बिजनेस चालू किया, बिजनेस उध्वस्त हो गया, तो संस्था चालू की, संस्था उध्वस्त हो गई। उन्होंने अपना गुरु भाइयों को मदद करने का प्रयास किया, उन्होंने उनको निकाल दिया। उन्होंने अपने खुद का ग्रंथ लिखने का प्रयास किया तो ग्रंथ को रद्दी में भेज दिया गया। वो अमेरिका जाके कुछ भक्त बनाने का प्रयास किया तो वो जो भक्त पहला बन रहा था उसमें आके प्रभुपाद जी पे आक्रमण कर दिया। तो सब कुछ तो प्रभुपाद जी सोचते रहते थे कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ भगवान, आप ऐसे क्यों कर रहा है, शायद आपकी इच्छा है कि मैं भक्त नहीं बने कोई, मैं प्रचार नहीं करूं, मैं बाहर चले जाता हूँ। नहीं, प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते अंत में कि हमें भगवान को नमन करके हमारे गुरु ने जो आदेश दिया है उसके अनुसार हमारा कर्तव्य करते रहना चाहिए। प्रभुपाद जी कर्तव्य करता रहा और फिर ऐसे अद्वितीय यश प्रभुपाद जी को भगवान ने दिया कि विश्व के इतिहास में ऐसी कोई तुलना नहीं है। एक पाश्चात्य देश के लेखक थे, वो कहते हैं कि अगर कोई कभी कभी कादंबरी होते, काल्पनिक ग्रंथ लोग लिखते, तो अगर कोई काल्पनिक ग्रंथ भी कोई ऐसे लिखेगा कि एक 70 साल का व्यक्ति 40 रुपए के देकर एक परदेश में चला गया और वहां पे एक विश्वव्यापी संस्था बनाने लगी। तो जो ऐसे लेखक ऐसे ग्रंथ लिखेगा उसका खंडन करेंगे लोग, बोले ऐसा कभी होता है क्या, कभी कल्पना भी करनी है तो कल्पना भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। पर प्रभुपाद जी का जीवन है ये कल्पना से भी विशाल है, कि कल्पना से भी अधिक अद्भुत है। वो भक्त नहीं है, वो पाश्चात्य स्कॉलर है, पंडित है, बोलते हैं कि विश्व के इतिहास में भी इसकी कोई तुलना है। बोलते एक तुलना हो सकती है कि जीसस जब आए थे तो उन्होंने लोगों को बोला कि आप जो भी कर रहे हैं छोड़ दो और तुम मेरे साथ चलो, और लोग आने लग गए उनके साथ। जैसे प्रभुपाद जी जो भी कर रहे हैं छोड़ दो मेरे साथ आके प्रचार करो, वैसे ही हुआ। पर वो बोले फिर भी जीसस जो थे वो नौजवान थे और साथ साथ वो अपने ही संस्कृति में प्रचार कर रहे थे। जीसस जो जन्म हुए, जहां पे जन्म हुआ वहां से 40 मील से ज्यादा दूर वो कभी गए नहीं, उसी में उनका जीवन हुआ, उसी में उनकी मृत्यु हुई। तो प्रभुपाद जी जब गए वो बूढ़े थे, 70 साल के थे, और वो ऐसे जगह गए जहां पे कोई भी कृष्ण को जानता नहीं था। पहले जब भक्तों ने कुछ हनुमान जी का मंदिर लाना, हनुमान जी का एक चित्र लाया था, तो उनको पता नहीं था हनुमान जी कौन है, ये भारतीय कुछ तो लग रहा था। तो प्रभुपाद जी, ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो भक्तों ने पूछा ये क्या है, ये एक बिल्ली है क्या? तो उनको पता नहीं था। तो ऐसे लोगों के पास प्रभुपाद जी गए, उन्होंने प्रचार किया। कैसे प्रचार किया, ये एक चमत्कार है। चमत्कार कैसे हुआ, प्रभुपाद जी कर्तव्यनिष्ठ थे, भौतिक जगह से कुछ देखा नहीं उन्होंने। अगर हम वो मार्कंडेय भागवत धर्म जो प्रभुपाद जी की प्रार्थना है वो पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, हे भगवान ये सब लोग रजोगुण तमोगुण से आवृत है, इसे समझ नहीं पा रहे आपको, तो कृपया आप कृपा दो ताकि समझ पाएंगे। प्रभुपाद जी ये नहीं सोच रहे, अरे ये लोग क्रिश्चियन है, ये अमेरिकन है, मैं बंगाली हूँ। प्रभुपाद जी का उच्चारण अच्छा नहीं था, तो अगर भारत से कोई परदेश जाता है तो सोचते हैं कि मुझे फॉरेन एक्सेंट सीखना चाहिए, और टॉफल नाम का परीक्षा होता है कि इंग्लिश अपना प्रोनाउंसिएशन कैसे करने का अच्छा। तो प्रभुपाद जी भगवान से प्रार्थना कर रहे, मेरे शब्दों का उच्चारण अच्छा कर दो आप ताकि ये समझ पाएगा। प्रभुपाद जी बोल रहे, हे प्रभु आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हो, अगर आप चाहे गए हैं तो तुम्हारा इच्छा है यदि हर उद्धार, तभी वो कहते कि अगर आपकी इच्छा है कि इन सबका उद्धार हो तो जरूर मेरे जो शब्द है उनको समझ में आ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी की हमेशा ये दिव्य दृष्टि थी, उसी कारण वे कभी मोहित नहीं हुए, कभी भौतिक जगत से प्रभावित नहीं हुए, उन्होंने सबको हजारों हजार लोगों को उद्धार कर दिया। तो उनसे प्रेरणा लेके हम भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए हम उसको एक आध्यात्मिक दृष्टि से देख सके, ताकि हम हर एक परिस्थिति में भगवान की तरफ जा सके। सारांश में हमने चर्चा की कैसे कि जो भागवत का दशम स्कंद है वो भगवान का घर जो है उसका वर्णन है। हमने हमारे आचार्यों ने कितने अलग अलग तरह से इस दशम स्कंद पे वर्णन किया, उसका हमने निरूपण किया। फिर हमने देखा कैसे कि जो भगवान घर में है उसका वर्णन कई और धर्मों में नहीं है। ये बहुत अद्वितीय रेवलेशन है, अद्वितीय ज्ञान है जो भागवत में दिया है। फिर अंत में जो लीला का रहस्य है कि भगवान हीरो है, योगमाया डायरेक्टर है, और फिर भगवान स्क्रिप्ट राइटर भी है, भगवान लेखक। तो इस तरह से भगवान अचिंत भेदावत रूप से नियंत्रण में है, नियंत्रण में नहीं भी है। भगवान की कुछ बाल लीला का चर्चन किया, और फिर अंत में हमने देखा कैसे हर एक कार्य जो होता है उसके तीन स्तर पे कारण होते। प्रथम कारण जो भौतिक कारण है, द्वितीय कारण जो है हमारे कर्म का कारण है, और तृतीय कारण है जो भगवान की इच्छा है। भौतिक विज्ञान केवल प्रथम कारण पे जाता है, तो हम भी प्रथम कारण पे देख सकते हैं, पर प्रधान रूप से हम तृतीय कारण पे देख के भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान को पसंद करने के लिए कैसे कार्य करना चाहिए ये देखते हैं, और उससे हम प्रगति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच।